का था, रूह वही रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं तरुण भटनागर की लिखी कहानी लॉर्ड इरविन ने इग्नोर किया। जंगल के आदमी और औरत बाहर की आवाज सुन चुके थे, आदिम आदमी और आदिम औरत, नग्न आदमी और औरत। मित्रों, नग्न एक क्रूर शब्द है, बर्बर और कातिलाना। जंगल को देखता हूं तो लगता है इसे हिंदी से बाहर खदेड़ दिया जाए। तो आदमी और औरत, सिर्फ आवाज और पुकार वाले आदमी और औरत, जिनकी भाषा आज भी कहां हो पाई। बरसों बीते, आदमी और औरत के पास बाहर की कई कई आवाजें आने लगी। पृथ्वी के बहुत से इलाकों की आवाजें जंगल में तैरती, वे पूरे साल जंगल में ध्वनियां होती। पेड़ों, नदियों और आकाश से वे आती, आदमी और औरत सुनते। कभी अकेले में औरत उसे गुनती, उन आवाजों पर वे नाचते, हंसते, दौड़ लगाते, उदास होते, रोते, चीखते। वे आवाजें जीवन थी, बस वे उन आवाजों को समझ नहीं पाए थे। वे आवाजें सांसें थी, कदम दर कदम धड़कन, बस वे उनके लिए अबूझ और अभिव्यक्तिहीन थी। उन आवाजों को उनके लिए कहना नहीं आता था। बाहर की दुनिया ने कई साल इंतजार किया, बरसों बीतता इंतजार, पर जंगल उसकी बात नहीं सुन पा रहा था। आदमी और औरत के लिए बाहरी दुनिया की बात बस आवाजें थी, सिर्फ आवाजें। बाहर की दुनिया को कोई और तरीका ईजाद करना था। एक दिन आदमी और औरत बहुत दूर निकल गए। वे जब जब एक दूसरे से टूटकर प्यार करते, उनका मन जंगल की अनजान जगहों को जाने का हो जाता। वे चलते गए, कई दिन बीते। जहां थककर वे रुके, वहां एक बड़ा सा पोखर था, थोड़ा सा आकाश और बाकी आकाश को अपनी देह में छिपाए पेड़। उस चीज को सबसे पहले औरत ने देखा था। वह अक्सर कुछ ना कुछ ढूंढती रहती थी। वह औरत जो थी, पेड़ों के नीचे नीचे पत्तों से ढकी दीमकों की बांबियों की दोनों तरफ वहां कुछ कुछ चमकता सा चूर्ण पड़ा था। औरत ने उसे अचरज से घूरा। जंगल में उसने इससे पहले यह चीज कभी नहीं देखी थी। उसने कान लगाकर सुना, उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी। फिर सूंघा, वह गंधहीन था। फिर उसे चाटा और एकदम से थूक दिया। वह एक ऐसा स्वाद था जिसकी वह अभ्यस्त नहीं थी, एक स्वाद जो इसलिए तीखा और असह्य था क्योंकि वह ठीक से अपरिचित थी, अनजाना, अचखा। जिन चार मूल स्वादों के लिए जीव बनी है, उनमें से एक अब तक बिना चखा रह आया था। वह जबान पर कभी ठीक से हुआ ही नहीं। वह स्वाद बहुत देर तक उसकी जबान में बना रहा। वह उस स्वाद को भूल ही गई थी। कितना कमतर तो था वह, इतना कम कि जीभ भूल गई थी। जंगल में जब कभी भूले बिसरे उसे उस स्वाद की याद आती, तो वह आदमी की पसीने से तर देह को चाटती। वह बेहद विरला स्वाद था, जो देह के अलावा और कहीं से नहीं आता था। वे दोनों लौट रहे थे और वह स्वाद अभी भी औरत की जीभ पर फैल रहा था। औरत को वह स्वाद अब कुछ कुछ रुचकर लग रहा था। उसने फिर उस हल्की चमकीली मिट्टी जैसी चीज को चखा। उसने वह आदमी को दिया। धीरे धीरे वह स्वाद उन्हें जचने लगा। वे उसके चटोरे होना चाहते थे। वह मीठे से कम चटकारेदार नहीं था। दुनिया में एक ही स्वाद है जो इंसान ने ढूंढा और संभाला, बाकी तीन तो पहले से ही थे। आदमी औरत की दुनिया में यह एक नई चीज थी। उन्हें नहीं पता था कि एक परिचित फीकापन कितने दिनों से उनके साथ रह आया था। वे दोनों खुश थे। वे अक्सर उसे चाटते और खुश होकर चिल्लाते। फीकी दुनिया बदलने लगी। काफी दिनों बाद समझ में आया कि वह हर चीज का फीकापन दूर कर सकती है, मांस से लेकर मन तक, पानी से लेकर देह तक, आंसुओं से लेकर जंगली फलों तक। कुछ दिनों बाद जब वह चमकीली मिट्टी जैसी चीज खत्म हो गई, तब वे दोनों फिर कई दिनों की यात्रा कर उसे फिर से उसी जगह से ले आए। वे बार बार लाते रहे, मुट्ठी भर भर लाते रहे, रहवास में सहेज कर रखते रहे। पर एक दिन गड़बड़ हो गई, उन्हें उसकी लत लग गई थी। उन्हें नहीं पता था कि यह नशा है, नशा जो खून में उतर चुका है। जो आंख छिपाकर आत्मा में प्रवेश करता है वे गिरफ्त में है, उसकी गिरफ्त में जिसका स्वाद सबसे बड़ा नशा है। हुआ यूं कि कई कई दिनों के बाद दोनों वहां गए थे। वे वहां पहुंचे ही थे कि उन्हें वहां ठीक वैसा ही जंतु दिखाई दिया जो कई दिनों पहले उन्होंने देखा था। हूबहू उनके जैसा, पर कितना अलग। औरत घबरा कर आदमी की पीठ से चिपक गई। आदमी ने उस बाहरी आदमी की तरफ भाला तान दिया। बाहरी आदमी ने उन दोनों को नहीं देखा था। वह जंगल के पत्तों और पौधों से अटी पड़ी जमीन पर बोरे से निकाल निकाल कर वही चमकदार मिट्टी जैसी चीजें बिखेर रहा था। आदमी भाला हिलाते हुए जोर से चिल्लाया। बाहरी आदमी डर कर एकदम खड़ा हो गया। उसने पल भर को उन दोनों को देखा, एक झटके में बोरे को वहां पे पटका और भाग खड़ा हुआ। औरत ने जल्दी से उस चूर्ण को अपनी मुट्ठियों में भरा। आदमी उस तरफ भाला ताने रहा जहां से वह बाहरी आदमी गया था। थोड़ी देर बाद दोनों लौटने लगे। उन्हें नहीं पता था कि बहुत दूर झाड़ियों में छुपे उस बाहरी आदमी ने औरत को वह पदार्थ मुट्ठी में भरते हुए देख लिया था। कहते हैं बाहरी आदमी बहुत पहले से यहां आता रहा, उस समय से जब बस्तर में एक अंग्रेज रहता था। अंग्रेज को पता था कि जंगल का मामला एक दूसरी दुनिया का मामला है, एक ऐसी दुनिया जो धरती पर नहीं है। इसलिए उन चीजों से काम नहीं चलेगा जिनसे यह दुनिया चलती है। उसने अपने मुलाजिमों से कहा था कि अगर जंगल को गुलाम बनाना है तो पहले जंगली जानवरों को जानना और पहचानना पड़ेगा। उन दिनों वन विभाग एक नया नया विभाग था। दुनिया में अंग्रेजों के पास अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसे बहुत से देश थे जहां बस्तर से कहीं ज्यादा संपन्न जंगल थे। इसलिए उन्हें बस्तर के जंगलों की उस तरह जरूरत नहीं थी जिस तरह खनिज मसाले और चाय वगैरह की। वे जंगल की चिंता नहीं करते थे। वह अंग्रेज पहला ऐसा आदमी था जिसने इस जंगल को झांक कर देखने की कोशिश की। जाने किस उम्मीद में चहकती आंखों से वह अंग्रेज दुनिया के हर तिक्त और अनजान कोनों को झांकता रहता था। झांकने के बाद अंग्रेज बहुत संभल कर निर्णय लेता है। उस दिन भी उसने निर्णय लिया कि वन विभाग में जंगली जानवरों का एक अमला बना दिया जाए। जानवर विभाग के सरकारी मुलाजिम चीतल, सांभर और हिरणों के लिए जंगल में नमक के ढेले डालते, जानवर उसे चाटते। समय बीतता गया। घने जंगलों में नमक डालने की जगह तैसी हो गई। ज्यादातर जगहें जंगलों के बाहरी हिस्सों में थी। जानवरों को नमक की लत लग गई। तब यह तय नहीं था कि कौन जानवर ही है और कौन इंसान। जंगल के उन बाहरी हिस्सों में जहां तक बाहरी आदमी पिछले 35 सालों में जा पाया था, जानवरों का नमक भी वहीं तक पहुंचा था। आदमी और औरत को नहीं पता था कि वे वहां तक चले आए थे जहां से थोड़ा आगे जाने पर जंगल खत्म हो जाता था। थोड़ा आगे जहां पृथ्वी खत्म होती है, बस दो कदम जहां खत्म होता है दावा, बस जरा सा दूर जहां खड़ा है आखिरी पेड़ और रुकी है आखिरी हवा। उन्हें नहीं पता था कि जरा सा आगे जाने के बाद जंगल पर से उनका विश्वास हमेशा के लिए उठ जाता। साल्ट, बड़े सरकारी मुलाजिम ने 1955 में मातहत से कहा। साल्ट, लॉर्ड इरविन ने 1930 में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से कहा। जी सर, नमक। ठीक है, इस तरह जंगल में नमक बिखेरना बंद कर दिया जाए। पहले सांभर, चीतल और हिरणों के लिए नमक की जरूरत पर आवश्यक विचार कर लिया जाए। इस तरह नमक बिखेरने पर होने वाला खर्च भी रुकेगा। मुंह में सिगार दबाए बड़े मुलाजिम ने कहा। मुंह में सिगार दबाए लॉर्ड इरविन के सामने खड़े एक छोटे मुलाजिम ने 1923 के नमक कानून की एक लाइन दिखाई। द पर्सन एक्सेप्ट द पर्सन हु इज गेटिंग सैलरी फ्रॉम एक्सचेकर ऑफ क्राउन और ऑर्ट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिज हायनेस shall not collect, produce, and sell the salt. One who will disobey the sand law and print it to do so will be punishable with a maximum of 6 months imprisonment and a fine of 50 rupees or both. Lord Irwin को अचानक ही इस अनाम और अक्रियाशील कानून को जानने की जरूरत आन पड़ी थी। बड़े मुलाजिम ने छोटे मुलाजिम से कहा, वहां एक दुकान बना दो, नमक की सरकारी दुकान। अबूझ मार्ट से लगी नारायणपुर की मड़ई साल में एक बार भरती है। मड़ई कैसे शुरू हुई इसकी एक छोटी सी कहानी है। कहा जाता है कि शुरुआत नमक की एक दुकान से हुई थी। तब वहां सिर्फ एक दुकान थी, सरकार की पहली दुकान। तब तक वहां घने जंगल थे, उससे थोड़ी ही दूर जंगलों की सीमा टूटती थी। कहते हैं सबसे पहले सिर्फ दो ही लोग उस दुकान आते थे, एक आदमी और एक औरत, आदिम आदमी और आदिम औरत, नग्न आदमी और औरत। माफ करें, नग्न का प्रयोग एक मजबूरी है, हिंदी में सिकुड़ती गुंजाइश की मजबूरी। और फिर महीनों बरसों बाद कुछ और लोग भी आने लगे, वे बढ़ते गए। एक अनजाना स्वाद उन्हें खींच ही लाता था। अबूझ मार के अनजाने असंभव अंधेरों से निकलकर वे बड़ी लंबी यात्राएं करते थे, नग्न और ललचाए। वे बस चलते जाते, बरसों से एक ही जगह जमे कठोर पत्थर, सांप, बिच्छू, गुहेरा, जंगली जानवर, डूबता उगता सूरज, कांटे, झाड़ियां, अनंत पेड़, बीमारी, मौत, कुछ भी तो उन्हें रोक नहीं पाता था। वे आते रहे, नमक की दुकानें बढ़ती गईं। दुकानों पर सरकार का एकाधिकार बना रहा, दुकानों के लिए पेड़ काटे गए, जंगल की जगह मैदान निकल आया। वे आते रहे, जंगल की सीमा पीछे सरक गई, वे टूट कर आते, देर रात तक नाचते, जलती आग के चारों ओर। उनकी आवाजें अब जंगल के बाहर आ चुकी थी, बाहर की दुनिया उन आवाजों को समझना चाहती थी। वे जहां से आते थे वे जगहें आज भी पता नहीं। किसी जगह को अगर पता करना हो तो उसके लिए आपको किसी आदमी और औरत के पैरों के निशान ढूंढने होंगे। अबूझ मार के जंगलों में वे निशान आज भी हैं, हर एक निशान जंगल की छाती पर बेतरह जज्ब। उसने कहा था एक बार, वह ऑस्ट्रेलिया से आता था, हर साल हर मड़ई में। वह इथनोलॉजिस्ट था, वह खुद को इथनोलॉजिस्ट कहे जाने पर चिढ़ता था। वह गोरा लंबा था और उसके सुनहरे मटमैले बाल उसके कंधे पर बेपरवाह झूलते थे। उसके पास से बदबू आती थी मानो वह कई दिनों से नहाया ना हो। वह हर साल की मड़ई की एक डायरी बनाता था। उसके पास पिछली 16 मड़ई की डायरियां थी। वह मड़ई में ही रहता था। वह रात को जंगल के लोगों के साथ उन्हीं की तरह अर्धनग्न होकर नाचता, उनके साथ लांदा और सल्फी पीता। वह एकमात्र था जो उनसे बात कर सकता था। उसके पास उनकी आवाजों के मतलब थे जो उसने एक डायरी में लिखे थे। जाने क्यों वो यहां क्यों आता था पता नहीं। वह बताता कि एक मार्डिया गीत है जिसमें उन निशानों का हवाला है। उन निशानों को सही सही पता करने के लिए मार्डिया जाननी पड़ेगी, और वह गीत भी जिसमें उन पैरों की आवाज आती है, उनके चलने और ठिठकने, चौंकने और दौड़ने की आवाज और सन्नाटा बोलता है। बरसात का लदबद पानी उन पर से बहता गया और वे बने रहे। समय की परतों के बीच वे निशान आज भी वहां तक जाते हैं जहां थोड़ा सा जंगल ठिठक जाता है और पेड़ों के बीच हठात मिलता है एक रहवास। झोपड़ी से भी आदिम चीज, क्या उसे रहवास कह सकते हैं? वह पूछता, मैं पूछता कि वह क्यों आता है। वह बताने की कोशिश करता। उसका बताना इतना अस्पष्ट रहा कि वह अब याद नहीं। वह मेरे क्यों पर अपना शब्दकोश टटोलता। इट इज लाइक अ पजल, आई हैवंट सॉल्व दैट। वन कांट बी एबल टू कन्वे द थिंग ही वांटेड टू कन्वे द मोस्ट, इजंट इट। अगर वह मरा नहीं होगा तो आज भी नारायणपुर की उस मड़ई में जरूर आता होगा। हाउ लॉन्ग विल ही वॉक? लॉर्ड इरविन ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की आंखों में झांकते हुए पूछा। उसके माथे पर एक स्थायी लंबी लकीर हमेशा रहती थी और वह कहने से पहले अपने शब्दों को संभालता, थूक कटकता था। 240 miles सर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने लॉर्ड इरविन से कहा। But he may not be alone. When he will start, people may join him and. And it could be well assumed that they might be thousands in numbers. It's a long way, 32 miles just for salt. वे सब खिलखिलाकर हंसती हैं। वायसराय हाउस के उस हॉल में जिसे आज हम अशोका हॉल के नाम से जानते हैं, वे देर तक हंसते रहे। Is it the base of there? लॉर्ड इरविन ने अपने सिर के पास अपनी तर्जनी कर सोचते हुए कुछ कहना चाहा। वह एक शब्द पर अटक गया था। What's that called? स्वराज सर, स्वराज, Oh yes, Soi Soi Yairaj. You said gentleman, Soi Yairaj.
कुछ लोग मुस्कुराए।
एक ने आंख दबाते हुए दूसरे की तरफ देखकर शराब का प्याला ऊंचा किया। इग्नोर हिम। कुर्सी पर अधलेटे लॉर्ड इरविन ने बहुत धीमे से कहा। सभी मुलाजिमों ने गौर से सुना। बरसों बाद ये शब्द उस कमरे से बाहर आए, रिचर्ड एटनबरो की गांधी में, इतिहास की किताबों में। अभी इन दो शब्दों को लिखा जाना बाकी है। लॉर्ड इरविन ने इग्नोर किया और गांधी एक लंबे धूल भरे रास्ते पर चलते चलते दांडी पहुंच गए। गांधी को वहां अरब सागर मिला, नमक से बेपनाह भरा सागर। बस्तर का कोई सागर नहीं। भूगोल में उसकी जमीन इस तरह बढ़ती हुई है कि उसके हिस्से कभी कोई नमकीन सागर नहीं होगा। हजारों लाखों किलोमीटर की वे जंगली दुर्गम पहाड़ियां दूरियां कभी नापी नहीं जा सकी, जिनसे चलकर उतरना बीमार होना था, मौत था। और इस तरह बरसों तक पहुंचते रहना था नमक की एक दुकान तक। दांडी का इतिहास हुआ इतिहास। बस्तर के जंगल के बहुत बाहर पड़ा एक तुच्छ सा शब्द इतिहास। अभी आप सुन रहे थे तरुण भटनागर की लिखी कहानी लॉर्ड इरविन ने इग्नोर किया। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया अमित तिवारी ने।